곧 쉐크남 행진과 도서지로 앞서기시 전놈이 미리 성크바 전문디나 성가르 기지가 부나샤에 아프시엄 타니지가 바트 로스카르티 훈기 로스키아 기지가 람람 잡니 기 프레르나 밀티 해 नेक अच्छे बनने की प्रेरणा मिलती है हर साधक को दिन में एक बार या दो बार श्रीमद् वाणी जी का पाठ जरूर करना चाहिए भौतिक लाभों के साथ साथ अलौकिक लाभ भी अमृत वाणी देती है विश्वास रखिएगा ये लाभ कोई कम नहीं अमृत वाणी के पाठ से और अधिक राम नाम जपने की प्रेरणा मिलती है ये लाभ कोई छोटा लाभ नहीं है जरूर करते रहिएगा श्री अद्वानी जी का पाठ परिवार के सत्संगों में चर्चा चल रही है वासना की पिछले रविवार आप जिसे अस्थित थी व्यक्ति कोई ना कोई इच्छा कोई ना कोई कामना करता ही रहता है उसके अंदर कोई ना कोई इच्छा होती ही है इच्छा करने का अधिकार तो उसे है लेकिन पूर्ति का अधिकार उसे नहीं है वह केवल परमात्मा के पास है आपकी प्रत्येक इच्छा की पूर्ति परमात्मा के अधीन यदि आपकी इच्छा स्वयं करने से कभी पूरी हो जाए बुद्धिमान बनो यही विश्वास करो जो मेरी इच्छा है वही राम जी की इच्छा हो गई तो उन्होंने पूरी कर दी सत्यवी बेटा यही है कभी किसी व्यक्ति की इच्छा अपनी इच्छा से पूरी नहीं होती यदि वह इच्छा परमात्मा की इच्छा बन जाती है तो पूरी हो जाएगी यदि परमात्मा की इच्छा नहीं है तो आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होगी जो इच्छा आपके अंदर प्रकट हुई उसने कोई संस्कार भीतर इंप्रेशन को भीतर छोड़ दिया अनफुलफिल्ड डिजायर अभी पूर्ति नहीं हुई उसकी भीतर प्रतीक्षा है कब वह इच्छा की पूर्ति होगी वह वासना के रूप में जमा रहती है जब तक ये वासना बेटा लेश मात्र भी है कई प्रकार की वासना है काम वासना है धन की वासना है सत्ता की वासना है पद प्रतिष्ठा की वासना है प्रशंसा सुनने की वासना है दूसरों को दुख देने की वासना है इत्यादि इत्यादि अनेक प्रकार की वासना है ये किसी न किसी प्रकार की वासना लेश मात्र भी यदि भीतर रहती है तो वह आपकी आध्यात्मिक उन्नति में बहुत बड़ी अवरोधक आपको भौतिक लाभ तो होते रहेंगे प्रारब्ध के अनुसार लेकिन ये ऐसी नामरूप चीज अंदर बैठी हुई है पिछली बार आपने देखा था बिल्कुल ऐसे जैसे जो नौका खूंटी से बांधी हुई होती है सारी रात उसे चलाते रहिएगा आप दो चप्पू लगा के इधर भी चलाने वाले बैठे हुए हैं नाबक बैठे हुए हैं वे चलाने की कोशिश कर रहे हैं सारी रात चलाते रहे हैं लेकिन वह एक पग भी आगे नहीं बढ़ेगी क्यों आपने जो खूंटी से रस्सी बंधी हुई है जिससे नौका बंधी हुई है वह रस्सी आपने खोली नहीं ये वासना है वासना बहुत घृणित है ऐसा दक्षिणों इसका निराकरण निरस्त होती है एक ही शब्द है इसे सदवासना में परिवर्तित कीजिएगा ये दुर्वासना है इसे सदवासना में परिवर्तित करने से ये निर्मूल हो जाती है सब बहाने हैं साधक जनों निर्मूल तो होगी परमात्मा की कृपा से बस उसकी कृपा पर निर्भर रहिए उसकी कृपा मांगते रहिए साधना जारी रखिएगा तो ये इरेडिकेट होगी एक शब्द याद रखू उपासना जो जिसमें समर्थ है इस वासना को नष्ट करने का उपासना आज सदक्षिणों आप जिसे अर्ज की थी कि इसका रूपांतरण कैसे किया जा सकता है, आज से चर्चा शुरू करेंगे। इससे पहले कि ये चर्चा शुरू की जाए, पुनः आपको एक दो उदाहरण देता हूं वासना की, ताकि आपको और पता लग जाए कि किस किस प्रकार से वासना ने घर किया हुआ है। आपको बोध है जिनकी सुरती मरते वक्त धन में चली जाती है, परमात्मा उसे सांप की योनि देते हैं वासना के कारण। धन जिंदगी भर आपने धन ही धन धन ही धन इकट्ठा किया है, आप सोचो कि मरते वक्त आपको राम की याद आ जाएगी तो ये संभव नहीं है। पक्का याद रखिएगा, ये संभव नहीं है। तो धन में सुरती उस वक्त चली गई तो परमात्मा सीधे आपको सर्प की योनि देता है। यदि आपकी वासना संपत्ति पर टिक गई, अपने घर पर, अपने बगीचे पर, अपनी कोठी पर कौन देखभाल करेगा इत्यादि इत्यादि, तो आपको भूत प्रेत की योनि परमात्मा देता है। कुछ एक दृष्टांतों के माध्यम से आपने पिछले एक दो रविवार से देखा ऐसा होता हुआ। एक उदाहरण और दी थी आपको, आज पुनः उस उदाहरण को रिपीट करता। आज एक संत महात्मा महामंडलेश्वर बहुत सिद्ध संत है, एक आरोग्य धाम से सेनेटोरियम कहा जाता है, स्वास्थ्य लाभ करने के लिए वहां चले गए। वहां जाके एक कमरे में उन्हें रख दिया गया, बड़े आदमी है, एक कमरे में उन्हें जैसे प्राइवेट रूम होते हैं, एक कमरा एक बेड लगा हुआ उसमें उसमें महाराज को विराजमान कर दिया गया है। एक दिन बीता होगा, क्या देखते हैं संत महात्मा, उन्हें कोई 30-32 साल की एक रूपवती महिला दिखाई देती है उसी कमरे में। बहुत चकित है, बड़े हावचाव से अपने आप को प्रस्तुत करती है, उसका पूरा आकार तो दिखाई नहीं देता लेकिन संत महात्मा का मेकआउट कि ये एक 30-32 साल की कोई महिला है, रूपवती है। सच धज के उनके सामने पूछा, आप कौन है, महात्मा का कोई क्या बिगाड़ सकता है, संत महात्मा का कोई क्या बिगाड़ सकता है, उसकी सुरत तो परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है, जब बनाने वाले के साथ जुड़ी हुई है तो फिर बिगाड़ने वाला कौन है, बिगड़ता तो उन्हीं के लिए है जिसकी सुरत बनाने वाले से जुड़ी नहीं होती, जो उनसे युक्त नहीं होता उन्हीं का बिगाड़ होता है जीवन में, उसका कौन बिगाड़ सकता है जिसका हाथ जब जनन ने पकड़ा हुआ है। कोई है भाई का लाल इस जिंदगी में, इस संसार में जो कुछ कोई उसका बिगाड़ सके, कोई नहीं। संत महात्मा को किसी प्रकार का कोई डर नहीं। अतएव पूछा, कौन हो आप, कहा महाराज ये बिस्तर मेरा है, मैं यही रहती हूं। कुछ वर्ष पहले प्रसूति में मेरी वृत्ति हो गई थी, मैं गई नहीं कहीं, मैं यही। महात्मा समझ गए कोई भूत प्रेत है। क्या करती हो आप, पूछा महात्मा ने, सीधी बातचीत वार्तालाप का, जो भी इस बिस्तर पर आता है मैं उसे रोगी बना देती हूं, दुख देना मेरा स्वभाव बन गया हुआ है। क्या मिलता है, महात्मा ने पूछा, दूसरों को दुख देकर तुम्हें क्या मिलता है, महात्मा ने पूछा सीधी सादी बातें। कहा मुझे बहुत अच्छा लगता है, दुख देने की वासना। कौन सी वासना हुई, दूसरों को दुख देने की वासना। संत महात्मा के संग से सदक्षिणों, इन चीजों का लाभ हमें लेना चाहिए, उनकी कृपा दृष्टि, उनका सत्संग, उनका सानिध्य, भीतर सड़ांग मारती हुई वासना को, कामना को, चाह को मिटाती है, पूरी नहीं करती। मत सोचिएगा कोई संत महात्मा, एक दिन पहले भी आपको उदाहरण दी थी, कोई संत महात्मा उसके भौतिक सुख की चिंता न करके तो उसके लौकिक सुख की चिंता करता है, उसे भौतिक सुख की परवाह नहीं है, उससे कहीं ज्यादा उसे उसके कल्याण की चिंता है, उसका कल्याण चाहता है, भौतिक सुख नहीं। ये शारीरिक रोग लगे हुए हैं, ये है वह है, तो डॉक्टर लोग हैं ना उनके लिए वह ठीक कर देते हैं। उड़िया बाबा सिंह, किसी ने पूछा, महाराज ये नेता जो आज हारा है आपके पास नॉमिनेशन से पहले भी आया था, आशीर्वाद लिए थे, नॉमिनेशन पेपर्स भरे उसके बाद भी आशीर्वाद लिए, उसके बाद जो कुछ हुआ उस पर भी आशीर्वाद लिए, इलेक्शन सीट मिल गई, इलेक्शन लड़ा, रोज आके लगभग वैसे तो कभी आते नहीं पर रोज आके आशीर्वाद आपसे लेते रहे, क्या कारण है महाराज हार गए? आपके आशीर्वादों पर प्रशंसित। उड़िया बाबा ने कहा, मैंने कभी जीतने के लिए इस आशीर्वाद दिए ही, बहुत पक्के संत महात्मा अंदर से, कुछ भी करो आप तस मस नहीं होते, मुझे इसका कल्याण देखना है ना कि इसे भौतिक सुख प्रदान करना है। भौतिक सुख सुख थोड़ी है, भौतिक सुख दुखयुक्त सुख है, दुख देने वाला सुख है, और कौन महात्मा है, कौन माई बाप है जो इस प्रकार का सुख अपने बच्चे के लिए मांगेगा? मैंने कभी इसके लिए जीत के लिए प्रार्थना की ही नहीं, आशीर्वाद दिया ही नहीं, मैं तो यही परमात्मा से कहता था, परमात्मा जिसमें इसका कल्याण है जिसमें इसका हित है वह इसका हित हारने में होगा, परमात्मा ने इसको हार दी। परमात्मा साधक जनों ऐसी मां है, व्यापारी नहीं, मां व्यापारी नहीं होती, मां बच्चे का भला चाहती है, बच्चा छुरी मांगता है मां कभी नहीं देती, कोई खिलौना दे देती लेकिन छुरी नहीं देती, मां जानती है इस छुरी से उसका हाथ कटेगा। रामकृष्ण परमहंस किसी सेवक के साथ किसी के घर गए, ये संत महात्माओं के साथ भी ये सब कुछ होता रहता है। संभवतः होशियारपुर की बात है, स्वामी जी महाराज को राय बहादुर युद्धमल लेके गए, कहा महाराज इस कोठी में कोई नहीं बसना चाहता, कोई रहना नहीं चाहता, जब से बनी हुई है तरह तरह की यहां से आवाजें आती हैं, हर किसी को भय लगता है इसके अंदर जाते रहना, किसने खाली पड़े हुए हैं, चलो राव बहादुर देखते हैं। स्वामी जी महाराज ने उस वक्त अब स्टिक पकड़नी शुरू कर दी हुई थी, स्टिक घुमाते घुमाते चले गए वहां पर, इतना ही कहा मैं अब यहां से हो चला हूं, जो भी कोई आप हो यहां से आज के बाद फिर कभी नहीं आना यहां पर, बस कोठी बसने योग्य हो गई। इस उम्र संत ही कर सकते हैं, उनके सानिध्य से उनके आशीर्वाद से ये बातें जो है वह करवाने योग्य है, उनसे ये करवाइएगा, ये लाभ लीजिएगा जिसमें आपका हित है, जिसमें आपका कल्याण है। रामकृष्ण परमहंस किसके घर गए हुए, सेवक के साथ, सेवक बाहर भीतर नहीं जाते, बाहर खड़े होते हैं, महात्मा अंदर होते हैं, सेवक को लगा ठाकुर किससे बातचीत कर रहे हैं, अंदर तो कोई है नहीं, सेवक ने ऐसे करके देख भी लिया कोई अंदर तो है नहीं, किससे बातचीत कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद मूलचंद जी देखो क्या क्या होता है, थोड़ी देर के बाद ठाकुर अपना बोरी बिस्तर वहां से उठा के तो बाहर निकल रहे, सेवक ने पूछा गेट पर खड़ा, ठाकुर क्या बात है, आर यू नॉट कंफर्टेबल, क्या बात है यहां पर, क्यों बाहर निकल रहे हो? ठाकुर ने कहा मेरे अतिरिक्त वहां और भी कोई रहते हैं, वे कौन है? तो कहा प्रीत आत्माएं होंगी, वह तो आप बाहर क्यों आ रहे हो? उन्होंने मुझे कहा कि तेरे कारण हम बाहर धूप में तप रहे हैं प्रीत आत्माओं ने, तो मैंने कहा मैं इनको क्यों दुख दूं, इनको जो जहां सुख है वहां सुख रखे, मैं बाहर चला जाता, मैं अपना बोरी बिस्तर उठा के बाहर आ गया। सेवक पूछता है ठाकुर क्या संत के दर्शन के बाद भी प्रेत आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती? कैसा गंभीर प्रश्न है सेवक का। ठाकुर कहते हैं अवश्य मिलती है। कोई प्रेत आत्मा संत के सन्निधि में आती ही नहीं है। ये परमात्मा का कोई विधान है, परमात्मा की सजा है तुझे। तू भटकती रहे, तुझे जिंदगी में कोई संत नहीं मैं मिलने दूंगा। क्यों? संत मिल गया तो तू इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। अभी तेरी योनि बाकी है, अभी तेरी अवधि बाकी है। अतएव किसी संत महात्मा को संपर्क पे नहीं आने देते परमात्मा। आज परमेश्वर की करनी खेल ठाकुर वहां चले गए हुए हैं। सेवक ने सुंदर प्रश्न पूछा, क्या संत के सानिध्य के बाद भी प्रेत योनि प्रेत योनि ही रहती है? क्या उसे उस योनि से मुक्ति नहीं मिलती? ठाकुर ने कहा मिलेगी, इससे भी मिलेगी, लेकिन क्या करूं, ये मुझे कमरे से निकालता है जो भी कोई है, ये प्रेतात्मा स्वयं उस कमरे को अभी छोड़ना नहीं चाहता। मैं क्या करूं, इसे कहां से दिलाऊं इसको मुक्ति? उस कमरे के साथ असक्ति ये वासना कैसे अपने आप को अभिव्यक्त करती है? आसक्ति के माध्यम से, अटैचमेंट के माध्यम से। आपकी अटैचमेंट धन से है, आपकी अटैचमेंट परिवार से है, संतान से है, संपत्ति से है, कोठी से है, इत्यादि इत्यादि। इस सारी की सारी अटैचमेंट जितनी भी है आसक्तियां, इन्हें कहा जाता है शास्त्र के अनुसार ये वासना आसक्ति के रूप में अभिव्यक्त करती है। मिटेगी कैसे? एक सुंदर साधन, असक्ति असक्ति से ही मिटेगी। संसार से असक्ति है तो उसे राग कहा जाता है, परमात्मा से असक्ति है तो उसे अनुराग कहा जाता है। बस अनुराग शब्द याद रखिएगा, उपासना शब्द याद रखिएगा, पर्याप्त है इस वासना को उन्मूल करने के लिए। देवियों सज्जनों, और कोई सुगम साधन नहीं। अपनी वासना को परमात्मा से जोड़ दीजिएगा तो यह सद्वासना बन जाती है। एक उदाहरण आज शुरू करते हैं। एक डाकू है, दुर्जन सिंह उसका नाम है, कुख्यात डाकू है। बच्चा बच्चा उससे डरता है, संत महात्मा पंडित इत्यादि सब कोई उससे डरता है, बड़ा खूनखार है। आज कहीं से डाका मार के आया है, पुलिस उसकी खोज में आज भी पीछे पड़ी हुई है। भागता भागता लगभग थकने को है, एग्जॉस्ट होने को है। क्या देखता है, कहीं लोग बहुत से बैठे हुए हैं। लगा सत्संग हो रहा है, चला गया, उनमें छिप के बैठ गया है, बच गया। आज प्रसंग क्या है, कथावाचक क्या प्रसंग है, वहां पर चर्चा का विषय क्या है? मां यशोदा नंद नंदन को किस प्रकार से तैयार करती है, कैसे कैसे सुंदर कपड़े पहनाती है, गहने, कान के कुंडल, गले की माला, पांव में पायल, हाथ के कंगन इत्यादि इत्यादि। दुर्जन सिंह इस बात को बहुत ध्यान से सुन रहा है। कहा, ये बालक कौन है, कभी सुना नहीं इसका, ये नंदनंदन कौन है, ये नंदलाल कौन है, इसकी मां इसको लाखों रुपये के गहने रोज पहनाती है, यदि इस बालक को लूट लिया जाए तो जिंदगी भर मुझे कभी डकैती नहीं करनी पड़ेगी। वासना बदलने जा रही है बेटा, पैसे की वासना, धन की वासना, चोरी के माध्यम से, और तो कोई नहीं ना, अपनी वासना को तृप्त करना चाहता है वह किसी भी ढंग से। पैसा इकट्ठा होना चाहिए, फेयर और अनफेयर मीन्स। जिनको पैसे की वासना हुआ करती है वह कहां देखते हैं कि मीन्स है फेयर और अनफेयर, सब चलता है, झूठ भी चलता है, रिश्वत देरी लेली सब चलता है, इनकम टैक्स की चोरी इत्यादि सब चलता है, फेयर और अनफेयर मीन्स सब चलते हैं। क्यों? इससे उनकी धन की वासना तृप्त हो रही है, वासना तृप्त हो रही है, कभी होती है
मैं ही प्रश्न पूछता हूं आपसे, कभी किसी की वासना तृप्त होती है? नहीं ना प्रभु, आप सिर मार रहे हो कि नहीं होती, नहीं होती, ये सत्य है। आप इस सत्य को जानते हो, हर कोई इस सत्य को जानता है। दर्शन सिंह के दिन बदलने वाले हैं, उसकी प्रारब्ध बदलने वाली है, उस पर परमात्मा की कृपा का शुभ आरंभ हो गया है। आज सत्संग में बैठने को मिला, सत्संग की समाप्ति हुई, हाथ में लाठी दुर्जन सिंह का, सब लोग चले गए हैं। दुर्जन सिंह सीधा कथावाच्य के पास जाके लाठी अपनी ऐसे मारी। ब्राह्मण कथावाचक बेचारा दुर्जन सिंह को देख के थर थर कांपा। अपनी पोथी पत्र इत्यादि जो कुछ भी था, जो चढ़ावा था, सब उसको चढ़ा दिया। लो महाराज, मुझे माफ करो, मानो मुझे जान से न मारो, जो कुछ भी इकट्ठा हुआ है आप ले लीजिए। लाठी से सब कुछ परे किया, मुझे इसकी जरूरत नहीं। मुझे उस बालक का पता बता जिसका तू वर्णन कर रहा था, देखना झूठ बोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। सच सच उसका पता बता, वह कहां रहता है बालक, मैं उस बालक को खोजूंगा, उसका सब कुछ लूटूंगा। बताती यमुना का किनारा है, वृंदावन गांव का नाम है, गोकुल गांव का नाम है, जंगल है उसके पास, गौएं चराता है, बंसी बजाता है, छोटा है, बालक है नंदलाल। बस एड्रेस मिल गया, यमुना का किनारा है। मैं यमुना कभी देखी नहीं, ये पता कि वृंदावन कहां है, लेकिन दुर्गन सिंह नंदलाल की लगन में चल रहा है। एक कोई नदी आई, सोचा यही होगी यमुना, पास जंगल भी था, लो ये तो वही जगह आ गई जहां मुझे जाना था। पुकारना शुरू कर दिया, नंदलाल, अरे ओ नंदलाल। प्रेम से तो पुकारना नहीं आता, अभी स्वभाव नहीं है, स्वभाव तो कठोरता का है, लूटो लूटो वाला। हरिओ नंदलाल, हरिओ नंदलाल, पुकारता जा रहा है। परमेश्वर की कृपा देखो कैसी होती है, दूर से नंदलाल कोई अनभिज्ञ तो नहीं, उसे पता है किसी भी ढंग से कोई पुकार रहा है, पर मुझे पुकार रहा है। अतः दूर से बांसुरी की आवाज पास आती हुई सुनाई दे रही। बांसुरी की आवाज सुन के दुर्जन सिंह मुक्त ब्रह्मस्त आंतर्बंध हो गए। इतनी मीठी थी बांसुरी की आवाज, मुरली की आवाज इतनी मीठी थी, मुक्त हो गया दुर्जन सिंह की आंखें बंद हो गई। मस्ती आ गई, राखू हाथ में लाठी, कभी छोड़ी नहीं, पकड़ी हुई है लाठी, एक मस्ती आ गई, आनंद विभोर दुर्जन सिंह कोशाई। अरे ये क्या हो गया मुझे, बड़ी अनहोनी सी घटना मेरे साथ, मुझे और मस्ती और आनंद इस प्रकार का, अपनी लाठी से अपने आप को हिलाया झुंझलाया, देखा प्रकाश प्रकाश है सामने, एक नन्ना सा बालक हाथ में बांसुरी है खड़ा है। उसी प्रकाश में उसने गौ भी देखी, ग्वाले भी देखे, इत्यादि भी देखे, पक्का हो गया ये वही है, ये वही नंदलाल है, जैसा कथावाचक ने बताया था ये वही है। अतएव उसे कहा, अपने गहने सारे उतार के मुझे दे दो। क्यों, भगवान ने पूछा, नंदलाल ने पूछा, क्यों 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 मत पूछो, गहने उतारो और मुझे दो, नहीं दूं तो ये लाठी देखते हो इसे फोड़ दूंगा, यदि तब भी नहीं मानोगे तो पास ही नदी है, उठा के उसमें फेंक दूंगा, गहने उतार लूंगा फेंक दूंगा। बाबा हो बाबा, भगवान ने अपनी तरफ से तो एक चकित होने के शब्द बोले, बाबा रेव बाबा मानो ये क्या करने वाला है मुझे। लेकिन डाकू को लगा ये किसी को बुला रहा है, अतएव झट से उनका मुख बंद करने के लिए अपना हाथ उनके मुख पर रखा। बस फिर क्या था, चुंबक के साथ लोहा लग गया, अचेत गिर गया। एक बिजली सी अंदर कौंध खिली, दुर्जन सिंह गिर गया।
थोड़ी देर के बाद होश आई, कहा नंदलाल मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी सारी तृष्णाएं, मेरी सारी कामनाएं, मेरी सारे शब्द। डाकू ने कैसे शब्द बोलने शुरू कर दिए, सब कुछ खत्म हो गया है। एक ही प्रार्थना रह गई है, आज के बाद यही रहूंगा, वायदा कर रोज थोड़ी देर के लिए दर्शन देने के लिए आ जाया करूंगा। समय हो गया है यही समाप्त करने की, इजाजत दीजिएगा। अगले रविवार को इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे, लगभग समाप्त है, थोड़ी चर्चा बाकी है, वे अगले रविवार को कर लेंगे। सदा की तरह दिव्य सज्जनों, जैसे आप सदा चुपचाप राम राम जपते जपते जाते हो, आज भी बिल्कुल वैसे ही करना। अभी बोला जाता है ना, आते भी राम बोलो जाते भी राम बोलो, ये सिर्फ सुनाने के लिए नहीं है, ये हम सबको ऐसा करना है। घर से चले तो भी राम राम जपते जपते आए, वापस पहुंचने तक राम राम ही जपते रहें, सदा राम राम जपते रहें, इसी में भलाई है, इसी में हमारा कल्याण है। धन्यवाद।